विदर्ड कर देना, किसी चीज का ऐसे फैलना कि उसके बाद उसका फिर दोबारा इख्तिताम होना शुरू हो जाना, इसको कहते हैं टू ओल्ड, टू मिच्योर। पहला वाला था, अल्लाह आपको मिच्योरिटी तक पहुंचाता है, अनशा जरा अल्लाह आपको बुढ़ापे तक ले आता है। बस यही है इंसान की जिंदगी का साइकिल, पैदा हुआ, मिच्योरिटी अचीव की, यूथफुल ईयर्स मिले एंड देन बुढ़ापा, और उसके बाद इलैही तुशरून, दी एंड। मगर ये दी एंड नहीं होता असल में, खलकल मौता वल हयाता, इलैही तुशरून क्या बता रहा है, ये दी एंड थोड़ी था, दी एंड होता तो अच्छा होता, जो कि बहुत से काफिर यही सोचते हैं दी एंड होता तो अच्छा होता, बट ये दी एंड नहीं है, और ये अल्लाह की रहमत की उसने बता दिया कि यहां पर दी एंड नहीं हो रहा, इट विल बी अ बिगनिंग, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी, अ न्यू लाइफ। तो अल्लाह ने बता दिया कि अल्लाह तुमको अनशा मजबूती देता है, और फिर अल्लाह जरा तुमको फैलाता है, यहां तक कि तुम्हें जमीन में ऐसे फैलाता है कि फिर तुमको बुढ़ापा दे देता है, और फिर तुम वापस उसकी तरफ आ जाते हो। तो स्टबर्ननेस को बदलने का बहुत टाइम नहीं है, लुजाज को खत्म करने का बहुत टाइम नहीं है, उतूब को अपने अंदर से निकालने का बहुत टाइम नहीं है, अपने अंदर से इस्लाम की नफरत को, नफूर को खत्म करने के लिए बहुत टाइम नहीं है। वी ऑल हैव लिमिटेड टाइम। और किसको मिलता है बुढ़ापा, किसी ने नहीं देखा। किसको मिलता है शबाब, किसको मिलता है बेस्ट यूथफुल ईयर्स, किसी ने नहीं देखा। मेक द मोस्ट ऑफ योर टुडे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफहूम आता है, जिसने अपना आज अपने गुजरे हुए कल से बेहतर नहीं किया वो तबाह हो गया। आज एक नेकी अपनी ऐड कर लें, एक नेकी का इजाफा कर लें, एक कदम अल्लाह की तरफ आ जाएं। लोग कहते थे उस वक्त भी जब अंबिया आकर कहते थे दैट यू हैव लिमिटेड टाइम, मेक द मोस्ट ऑफ योर लाइफ, वो मजाक उड़ाते थे, वो कहते थे अच्छा कब आएगा वो वादा, जरा बताओ। तो आज भी हमारा अमल चीख चीख कर ये बात बताता है, हम कुरान सुनते हैं, हम कुरान पढ़ते हैं, हम ऑडियो सुनते हैं, हम क्लासेस में जाते हैं, हमारे कानों पर दर्स की आवाज आती है, हम खत्म कुरान में पहुंच जाते हैं। आई रियली लव दैट कि लोग खत्म कुरान में आते हैं, बट वाई जस्ट खत्म कुरान, क्यों पूरा कुरान क्यों नहीं। चीजों को खत्म करने का बहुत शौक है ना, तो हम याद रखें एक दिन हमने भी खत्म होना है। बेहतर है कि उस खत्म से पहले हम अपनी जिंदगी के अंदर अपने गुनाहों को खत्म कर दें, बेहतर है कि उस खत्म से पहले हम अपने आप को इमोशनली अल्लाह से अटैच कर लें और अपने अंदर से तमाम दीन की नफरत को खत्म कर दें। हर नाफरमान ये सवाल करता था जब उनको कहा जाता था कि यू हैव लिमिटेड टाइम, वो कहते ओ अच्छा कब आएगा वो लिमिटेड टाइम। आगे आयत नंबर 25 में वही सवाल मेंशन किया गया है, जब उनको बताया गया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से योर लाइफ इज लिमिटेड, इज ऑल गोइंग टू एंड वेरी सून, वयकूलूना और वो सब कहते हैं मता हाज़ल वादु इन कुंतुम सादिकीन, अच्छा कब होगा ये वादा पूरा अगर तुम सच्चे हो। हशर तो होना है, एंड देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल वर्ड इन आयत नंबर 24, इलैही तुहशरून आया ना, हशर कहते हैं ना हम, एक होता है अरबी जुबान में जमा करना हशरा, एक होता है अरबी जुबान में जमा करना जमा, देयर इज अ डिफरेंस। जमा आता है कुरान में जब डिग्निटी के साथ अच्छे फरमाबरदार लोगों को अल्लाह की तरफ जमा किया जाएगा, और हशरा आता है जानवरों को जमा करने के लिए। अल्लाह की नजर में लुजाज वाले, उतूब वाले, नफूर वाले, अल्लाह की नजर में नाफरमान जानवरों की तरह, उनको जानवरों की तरह हशर के साथ जमा किया जाएगा। जुमिया में इज्जत है, जमा जब जमा किया गया इज्जत के साथ मोमिनीन को जमा किया गया। वयकूलूना मता हाज़ल वादु इन कुंतुम सादिकीन, तो वो कहते थे काफिर का रिस्पांस के बताओ हाँ वो वादा कब आएगा। आप देखें इन कुंतुम सादिकीन आया, आप में से जिन लोगों को अरबी समझ आती है इन कुंता सादिकन नहीं आया, अगर तुम सच्चे हो, कहने वाले तो एक रसूल अल्लाह है ना, पीछे कुल कुल आ रहा था ना दोनों जगह, इन कुंतुम जमा क्यों आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ और किसको शामिल किया, तमाम सहाबा को, तमाम सहाबा को शामिल किया, तमाम सहाबा इस्लाम की जिंदा तस्वीर थे। ये मक्की दौर है ना, अभी रिबा के ऊपर आयात आई ना, सूद को हराम किया गया ना, शराब हराम की गई ना, हिजाब की आयतें आई نہ وراثت کے قانون کی آیتیں آئیں، نہ طلاق کے قوانین دیے گئے، نہ یہاں پر جو ہے وہ تہمت لگانے کے الزام لگانے کے قوانین دیے گئے، نہ رجم کی سزا آئے، کچھ بھی نہیں۔ تو پھر صحابہ کس چیز کی تصویر بنے ہوئے تھے؟ کہنے کو ابھی تو آخر میں، بالکل آخری دور میں، مکی دور کے 5 وقت کی نماز فرض ہوئی ہے، اس سے پہلے مسلمان دن میں 2 نمازیں پڑھتے تھے۔ تو پھر تھا کیا مکی دور میں؟ شریعت تو کچھ بھی نہیں تھی، توحید تھی۔ شریعت کیسے تھی، کیا تھا؟ حالانکہ کہتے ہیں، ہم سوچتے ہیں حجاب نہیں تھا شریعت میں، وراثت نہیں تھی، طلاق نہیں تھا، شراب نہیں تھی، سود نہیں تھا، احکامات طلاق کے نہیں تھے، تو پھر تھا کیا؟ کچھ بھی تو نہیں تھا۔ اٹ مسٹ بی ایزیئر، اٹ وازنٹ ایزیئر۔ اور ہم جانتے ہیں کہ مکی دور ٹف تھا مدنی دور سے۔ سابقون کون سے لوگ کہلوائے؟ وہ جو مکی دور میں ایمان لے کر آئے تھے۔ کیا تھا وہاں پر؟ ہر انسان اپنے پورے جسم سے، اپنی سوچ سے، اپنی زبان سے، اپنے اخلاق سے رسول اللہ کا فالوور نظر آتا تھا۔ صرف کونے میں بیٹھ کے ان پر لاکھوں درود اور لاکھوں سلام نہیں کرتا رہتا تھا، پریکٹیکلی وہ نظر آتے تھے۔ اور یہ کیا تھا جس نے ان کنتم صادقین میں صحابہ کو بھی شامل کیا؟ آپ سوچیں، ابو جہل جیسا اسلام کا دشمن، امیہ بن خلف جیسا اسلام کا دشمن، ابو لہب جیسا اسلام کا دشمن، ان کے سامنے توحید ڈکلیئر کرنا، وہ جنہوں نے 360 بت حرم میں رکھے ہوئے تھے، وہ جو اسی کعبہ کا طواف کرتے تھے جس کو بتوں سے بھرا ہوا تھا، اسی مکہ میں آبا کا انکار کرنا کہ ہم شرک پر نہیں چلیں گے، اسی مکہ کے اندر توحید پر سٹینڈ لینا، ہم اسلام کے جھنڈے کے انڈر آ کر رہیں گے، جو محمد کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کی بات کو حق مانیں گے۔ آسان تھا؟ ابو مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جب اوپنلی حرم کے میدان میں سورہ رحمان پڑھی تھی، ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے آ کر اتنا حملہ کیا تھا، ابو جہل نے پاؤں مار کے زمین پر لٹا کر ان کی کالر بون توڑ دی تھی۔ آسان تھا ایسے دور میں صحابہ کا اپنا ایمان ڈکلیئر کرنا، اوپنلی ایمان ڈکلیئر کرنا؟ اٹ واز دا ٹفسٹ ایگزام۔ اسی لیے آپ دیکھیں مکی دور میں کوئی منافق نہیں تھا، جو مسلمان ہوتا تھا وہ پوری انشراح کے ساتھ مسلمان ہوتا تھا، اس کو معلوم ہوتا تھا اب گھر کی چھت بھی چھوٹ جائے گی، اب بائیکاٹ بھی ہو جائے گا، اب فزیکل اور وربل پرسیکویشن بھی ہوگی، اب ممکن ہے ٹرائبل پروٹیکشن بھی ہٹ جائے، اور ٹرائبل پروٹیکشن کی بہت ویلیو ہوتی تھی اس ٹائم پر۔ جس کے پاس ٹرائبل پروٹیکشن ہوتی تھی اس کو دشمن ہاتھ نہیں لگا سکتے تھے۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کوئی قریش کا سردار حملہ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے کہ ابو طالب کی بیک موجود تھی، ابو طالب کی جوار، ان کی پروٹیکشن موجود تھی، تو ٹرائبل پروٹیکشن ویلیو رکھتی تھی۔ جو یہاں مسلمان ہوتا تھا، قبیلے اس مسلمان ہونے والے انسان سے اپنی ٹرائبل پروٹیکشن ہٹا لیتے تھے، اور ٹرائبل پروٹیکشن ہٹنے کا مطلب ہوتا تھا ناؤ دس پرسن از ولنریبل، اب قریش کا جو سردار جیسے چاہے اس کو جانور کی طرح ٹریٹ کرے اور اس پر ٹارچر کرے۔ یہ ہمت تھی صحابہ کی، ایسا نہیں تھا اپنے گھروں کے کونے میں بیٹھ کے بس نوافل پر نوافل اور ذکر پر ذکر اور تسبیحات پر تسبیحات اور 1,25,000 کا ختم ہویا جا رہا ہے۔ اٹ واز دا ایزیسٹ تھنگ ٹو ڈو، اس پہ کون سی مشکل بات تھی؟ اپنے گھر کے کسی کونے میں بیٹھ جاتے، دار الارقم میں چلے جاتے، عبادت کرتے رہتے، تسبیحات پڑھتے رہتے، خوب اللہ کا ذکر کرتے رہتے، خوش رہتے۔ ان کنتم صادقین، دے ڈکلیئرڈ دیئر فیتھ ان دیئر فیملیز، ان دیئر سراؤنڈنگ، ان دیئر ٹرائبس، ہم محمد کے دین صلی اللہ علیہ وسلم پر اب آ چکے ہیں، جو بھی دین ہے، اب یہ جو کہیں گے، ابھی تک تو شریعت آئی بھی نہیں تھی، اب یہ جو کہیں گے ہم اس پر ایمان لائیں گے۔ یہ تھا جس نے صحابہ کو ان کنتم صادقین کے اندر شامل کیا تھا، یہ بہادری تھی جس نے ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ سب اسلام کے علم بردار تھے۔ ہم اپنے آپ کو سوچ لیں، ہمارے آس پاس تو قریش نہیں ہے، ہمارے گلے میں کون رسی ڈالے گا اور کون ہمیں سڑک پر گھسیٹے گا، ہمارے سے کون چھت چھین لے گا، نکلو گھر سے باہر اس لیے کہ تم کلمہ پڑھتی ہو، الحمدللہ ہم تو کلمہ گو لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی سی قربانیوں میں ہم obvious practicing مسلم نہیں بن پاتے؟ छूटती नहीं है हमसे रस्में, जहेज हमसे नहीं छूटता, मंगनियां हमसे नहीं छूटती, माइयों हमसे नहीं छूटते, एक अरसा तो मुझे इस घर में आते हुए हो गया, मतलब कम ऑन 6 साल तो कम से कम मेरा ख्याल हो गया, 6 से 7 साल अल्हम्दुलिल्लाह। वही वही सवाल हमारे बार बार के, माइयों करें, मेहंदियां करें, बर्थडेज करें, एनिवर्सरीज करें, ये क्या है? हिम्मत नहीं है हम में, नहीं स्टैंड ले सकते? अगर घर वालों से बात कर ली और घर वाले नहीं मानते, जस्ट कीप योर सेल्फ सेपरेट फ्रॉम दीज ओकेजन्स। बाकी सब जगहों पर बाइखलाक रहिए, बाकी सब जगहों पर उनके हक अदा कीजिए, एक ही छत के नीचे उनके साथ रहिए, जस्ट डोंट गिव योर हेड काउंट इन दीज थिंग्स। मेक योर सेल्फ अ प्रोमिनेंट पर्सन ऑफ अ प्रैक्टिसिंग मुस्लिम थिंग। नहीं बनेंगे तो याद रखें, अल्लाह ने तो कहा है कलीलम मा तशकुरून। सारी फ्रेंड्स ये कर रही हैं, प्लीज मुझे भी करने दें। अम्मा कहती हैं बेटा बट ये दिस इज नॉट द राइट वे, अल्लाह नाराज हो जाएगा, आप तो हर वक्त अल्लाह अल्लाह की बातें करती रहती हैं। मेक योर सेल्फ प्रोमिनेंट इन द सोसाइटी दैट यू आर फॉलोअर ऑफ इस्लाम। क्या एम्बेरसमेंट है, कोई पत्थर नहीं मारेगा उठा के आपको और मुझे। सिर्फ लोगों की टेढ़ी नजरें हमसे बर्दाश्त नहीं होती, चार जुमले बर्दाश्त नहीं होते, खानदान वाले हमारे पीछे बातें करेंगे, लेट देम स्पीक, अच्छा है हमारे गुनाह माफ होंगे, बोलने दें। इखलाक को दुरुस्त रखें और अपने आप को अब जरा थोड़ा सा मजबूती की तरफ लेकर आए। बहुत साल हो गए हमें कुरान सुनते हुए, इट्स अ टाइम टू डू समथिंग, मेक अ चेंज इन द सोसाइटी। औरत घर की बदले और घर ना बदले, ये मुमकिन नहीं है। अगर घर नहीं बदल रहा, इसका मतलब है कि मेरे और आपके अमल में कमी है। दिस इज सिंपल फॉर्मूला। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जिन घरों से आ रहे हैं, आई एम 99.99999% श्योर, जितनी शादीशुदा खवातीन हैं, हम सबके शोहर बहुत कोऑपरेटिव हैं। संडे के दिन भी हम उठ के आ जाती हैं, संडे के दिन भी। और हाउसवाइफ्स हैं, हम कोई जॉब नहीं करती हैं कि हम कहें हाँ हाँ मजबूरी है, हमारी मीटिंग है, बहुत जरूरी है, हम जा रहे हैं। नहीं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। बीवी बदल जाए, माँ बदल जाए घर के अंदर, और घर बदलना शुरू ना हो, मैं नहीं मानती। हम बदल नहीं रहे, हम शायद सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं बदलने का, या हम पिक एंड चूज कर रहे हैं, या हमारे दिल के अंदर अल्लाह और शरीयत इस वक्त पार्शियल मूवमेंट पर चल रही है। हम कुछ बातें अल्लाह की मानते हैं और कुछ अपनी नफ्स की मानते हैं। हमें अल्लाह ताला ने वो ताकत दी है, हम माशरे की डायरेक्शन बदल सकते हैं, हम औरतें। औरत को अल्लाह ने वो ताकत दी है, अल्लाह ने नस्ल अगली औरत की गोद में डाली है। औरत को अल्लाह ने वो स्ट्रेंथ दी है कि औरत अपने साथ साथ कई और लोगों को अल्लाह की मोहब्बत में इन्वॉल्व कर सकती है, इल्म दे सकती है, आगे बढ़ा सकती है, हिम्मत दिला सकती है, बाहिम्मत बना सकती है। अपनी स्ट्रेंथ को पहचाने, मत शैतान के गुरूर का शिकार हो, मत उसके डिसेप्शन का शिकार हो, मत अपोलोजेटिक मुस्लिम बने। आपके और मेरे लिए मैदान खुला है, बढ़ें आगे और आए कलीलम मा तशकुरून में। हजरत बिलाल के पास ज्यादा रिसोर्सेज थे हमारे मुकाबले में, गुलाम थे, स्टैंड लिया था अपने मालिक के खिलाफ, उमैया बिन खल्फ के खिलाफ। उनके पास तो टाइम था, उनके पास तो मौका था, कॉम्प्रोमाइज कर जाते। जो कुछ उमैया बिन खल्फ उनके साथ कर रहा था, उनके उनका कुर्ता उतार के, उनको पेट के बल पथरीली जमीन पर लिटाकर, उनके गले में रस्सी बांध के, पहले खुद पूरे मक्का की गलियों में उनको फहराता रहा, और फिर वो जो माशरे के नौजवान होते थे जो सड़कों पर खड़े रहते हैं, उनको पकड़ा दिया करता था, मैं थक गया हूं तुम्हारी बारी। उनके पास तो मौका था, वो कॉम्प्रोमाइज कर जाते, किया उन्होंने कॉम्प्रोमाइज। और हम अपोलोजेटिक मुस्लिम, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, वो इमाम साहब तो ये कहते हैं, वो मुफ्ती साहब तो ये कहते हैं। जब हमें अमल नहीं करना होता तो हुज्जतें हैं हजार, और जब हमें मानना हो एक आयत काफी है, एक आयत काफी है। वमा कदरुल्लाह हक कदरी, जिसको अल्लाह का कदर आनी होती है उसके लिए एक आयत काफी हो जाती है। अल्लाह से दुआ करें, रमजान का महीना है, अल्लाह हमें वो बहादुरी अता करे कि हम इस रास्ते में वो मुट्ठी भर मुसलमान बन जाएं कि हम दीन को दोबारा से खड़ा कर सकें अपने अपने खानदानों के अंदर। तो सहाबा ने बेहतरीन तरीके से, बेहतरीन इखलाक से, और देखें सहाबा की जुबानें खामोश थी, कुफ्फु अईदियकुम, हाथ रोक के रखना। इखलाक बेहतरीन थे, तौहीद दिल और दिमाग और जुबान पर थी, और रसूल की मोहब्बत में यूनाइटेड थे, यूनाइटेड। हम क्यों बट गए इतने, उस कास्ट की लड़की हमारे खानदान में सेट नहीं हो पाती है, उस कास्ट के रस्में हमारी कास्ट से मिलती नहीं है। जब हम सब की सुन्नतें, जब हम सब की रस्में सुन्नतों पर आ जाएंगी तो हम सब यूनिफाइड हो जाएंगे, खुद ब खुद हमारे लिए चीजों को एडजस्ट करना आसान हो जाएगा। अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत में सहाबा यूनिफाइड थे, एक तस्वीर नजर आते थे, एक सफ नजर आते थे, एक रस्सी नजर आते थे, वो रस्सी जो डायरेक्ट अल्लाह के कलाम से जुड़ी हुई थी। हुआ हबलुल्लाहिल मतीन, ये थे सहाबा। जब भी आयत में आया ये कुफार कहा करते थे, ले आओ या बताओ वो वादा कब पूरा होगा, इन कुन तुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहलवाया गया आयत नंबर 26 में, कुल इनसे कह दीजिए इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, इसका इल्म तो आया ही नहीं, इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, इनसे कह दीजिए बात तो यह है कि इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। वह इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन, और ये कि मैं सिर्फ एक वाज़े खबरदार करने वाला हूं। आप देखें इन्नमा इल्मुहु नहीं आया कि क़यामत का इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है, इसलिए इसके लिए स्कॉलर्स कहते हैं कि क़यामत तो अंडरस्टूड कॉन्टेक्स्ट में आ ही गई कि क़यामत कब आएगी, इसका इल्म तो अल्लाह के पास है, लेकिन अल इल्मु ये बता रहा है कि अल्लाह ताला ने अपने रसूल की जुबान से यूनिवर्सल स्टेटमेंट कहलवा दी कि असल में कुल इल्म, कुल नॉलेज, कुल इख्तियार, जैसे डोमिनियन अल्लाह के हाथ में है ऐसे ही नॉलेज इल्म अल्लाह के हाथ में है। कुल इल्म अल्लाह का है, सिर्फ और सिर्फ उसी की प्रॉपर्टी है। हम मुसलमान तो सिर्फ एक स्ट्रेटजी पर काम करते हैं, समय आना व आता आना, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ से आ जाता है हम मान लेते हैं, कुल इल्म उसके पास है, रसूल की जुबान से कहलवा दिया गया नंबर एक, ताकि हमेशा इंसान ये बात जान जाए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास भी क़यामत के आने का इल्म नहीं था कि वो एग्जैक्ट किस डेट पर आएगी। और ये वो इल्म है जो किसी नबी को नहीं दिया गया, किसी इंसान को नहीं दिया गया, क़यामत कब आएगी सिर्फ अल्लाह जानता है। दूसरी बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कुल कहकर यह बात पूरी दुनिया को बता दी गई और बाद में आने वाले तमाम मुसलमानों को, आप आलिमुल गैब नहीं थे, आपके पास गैब की सिर्फ उतनी खबरें थीं जो अल्लाह ने आपको दे दी थी। आलिमुल गैब कौन है? सिर्फ अल्लाह, सिर्फ अल्लाह। नंबर तीन, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क़यामत का इल्म नहीं है कि वो किस दिन आएगी, और इसका मतलब है सहाबा के पास भी नहीं है, तो क्या उसके बाद किसी के पास आ सकता है कि वो कब आएगी? तो आइंदा से जब भी कभी दुनिया में प्रेडिक्शन स्टार्ट हो जाए कि 23 दिसंबर को, 25 मई को, 26 जून को क़यामत आने वाली है, जस्ट इग्नोर दीज थिंग्स। कब आएगी ये अल्लाह बेहतर जानता है। हमने और आपने कई दफ़ा ऑब्जर्व कर लिया पिछले दो डिकेड्स के अंदर दुनिया को बहुत बेवकूफ़ बनाया गया। आई क़यामत नहीं, नाफरमान की क़यामत उसकी मौत पर आ जाती है, तो हमें अपनी मौत की तैयारी करनी है। आपकी और मेरे लिए ये चीज़ फिक्र का लम्हा नहीं होनी चाहिए कि क़यामत किस तरह किस वक्त आएगी, फिक्र ये है कि मैं उसकी तैयारी कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ। अगला पॉइंट जो स्कॉलर्स बताते हैं इसके अंदर, कि अल्लाह के मुकाम को रसूल के मुकाम से बुलंद कर दिया गया ताकि आइंदा कोई भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के बराबर लाकर ना बिठा दे। हाँ, अल्लाह टॉप पर है, उसके बाद मखलूकात में टॉप प्रायोरिटी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। और आखिरी पॉइंट उलमा इसके अंदर मेंशन करते हैं, इस आयत का मकसद ये भी है कि यह बता दिया जाए कि इल्म सिर्फ अल्लाह की प्रॉपर्टी है। फरिश्तों ने भी ये बात कही थी, ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, हमारे पास कोई इल्म नहीं है मगर सिर्फ इतना अल्लाह जितना आपने सिखा दिया। तो जिसके पास जितना इल्म आ जाए, खासतौर पर दीन वाले ये बात सुन लें, जिसके पास जितना इल्म आ जाए, दीन उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, इल्म उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, उसने कभी तकब्बुर का शिकार नहीं होना। इल्म वाला और मुतकब्बिर, दीन वाला और मुतकब्बिर, वो हदीस याद कर लें कि सबसे पहले जिन तीन लोगों को जहन्नुम में डाला जाएगा उसमें पहला वो होगा जो दीन का इल्म पढ़ाने वाला था। तो कभी भी दीन के इल्म के साथ तकब्बुर ना आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए कहलवा दिया गया इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन कि मैं तो सिर्फ खबरदार करने वाला हूँ, यानी मेरा काम क्या है, मैं ईमान रखूँ जो अल्लाह की तरफ से आया है वो हक है, जो अल्लाह मुझे हुक्म दे मैं उसको मान लूँ, اور ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف سے آ جائے اس کو کمپلیٹلی لے لیا جائے. نذیر کا لفظ یہ بھی مینشن کر رہا ہے جیسے پیچھے بھی آیا تھا کہ اپنی زندگی میں آج وارننگ سے فائدہ اٹھا لو, اپنی زندگی میں آج بہترین یوٹیلائزیشن کر لو وقت کا, اس لیے کہ وہ وقت بھی آئے گا جب جہنم کے باہر کھڑے ہو کر انسان خود کلیم کرے گا کہ ہاں میرے پاس آئے تھے نذیر, میں نے ان کا فائدہ نہیں اٹھایا. آخری پوائنٹ اس آیت کے اندر جو علماء بتاتے ہیں اور بہت ریلیونٹ ہے آج کل کے پوائنٹ آف ویو سے, یہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوایا گیا ہے انما انا نذیر مبین, اس میں اسکالرز نے ایک پوائنٹ یہ بتایا, اس کا مطلب ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان کو اللہ کے ہر حکم, اللہ کی دی ہوئی ہر آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث کا مفہوم علم مکمل سمجھ آ جائے. مثال کے طور پہ مردوں کے اوپر سلک حرام کیوں ہے؟ اب جو بھی آپ جواب دیتی نا, آپ ایک جواب دیں گی جس کو انکار کرنا ہے وہ اس کے 10 جواب کہے گا نہیں میں نہیں مانتا. مردوں کو حیض کیوں نہیں آتا؟ میں آپ کو وہ سوال بتا رہی ہوں جو آتے ہیں. پھر عورت کو حیض اگر اللہ کی طرف سے آتا ہے تو وہ ناپاکی ہوتی ہے, اور اگر عورت ناپاکی کی حالت میں پریگننٹ ہوتی ہے, ظاہری بات ہے جب آپ حیض آپ کے بند ہو جاتے ہیں آپ کی وہی یوٹرس لائننگ آپ کے بچے کو گرو کر رہی ہوتی ہے, اس کا مطلب ہے دنیا کا ہر انسان ناپاک ہے؟ یہ میں آپ کو وہ سوال بتا رہی ہوں, یہ لاجکس بتا رہی ہوں جو باہر دنیا میں موجود ہیں. جواب دیں گے؟ بہت سے ایسے سوالات آج کل دین کے بارے میں مسلمان اٹھا رہے ہیں جو مسلمانوں کے دماغ کی پیداوار نہیں ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, ہمارے بچے ہوں یا ہمارے بچے, خاص طور پر اب میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ بچیاں ہی بیٹھی ہیں میرے سامنے, ہم میں سے وہ خواتین جو 30 سال اور 40 سال کے درمیان میں ہیں اور مجھ سے اگر بڑی ہیں تو اور زیادہ ان میں یہ چیز ہوگی, جب ہمیں پیریڈز ہوتے تھے ہم اعلان نہیں کرتے پھرتے تھے اپنی یونیورسٹی میں اور اسکول کالجز. آج کل کی بچیاں, ہاں تو اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ ہم اپنے ابا کے سامنے روزے میں کھڑے ہو کے پانی نہیں پیتے تھے, میں ابا کے سامنے کہہ رہی ہوں, یونیورسٹی پانی کی بوتل رمضان میں لے کر جانا دور کی بات, آج کل کیا ہے؟ ہاں تو اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں, یہ آپ ایسی نہیں تھیں, آپ کی بیٹی ایسے کیسی ہو گئی, آپ کی ماں ایسی نہیں تھی, آپ کی بیٹی ایسی کیسے ہو گئی, آپ کی خالہ ایسی نہیں تھی, آپ کی پھپھو ایسی نہیں تھی, پاکستان کا معاشرہ ایسا نہیں تھا, مسلمان ایسے نہیں تھے, تو ہمارے بچے ایسے کہاں سے ہو گئے؟ دس از گلوبل امپیکٹ, گلوبل امپیکٹ. یہ ہمارے بچوں کی حرکتیں نہیں ہیں, یہ ہمارے بچوں کے اوپر لا دی گئی ہیں, اور دنیا کیونکہ گلوبل ویلیج ہے تو آبویسلی ہمارے بچے اس سے ایکسپوز ہو رہے ہیں. اس طرح کے سارے سوالات جو میں بھی آپ کے سامنے مینشن کر رہی ہوں 90% مسلمانوں کے ذہنوں میں پاپ اپ نہیں ہو رہے, یہ باہر کی سیولائزیشن سے آ رہے ہیں, اور 90% ان سوالوں کا مقصد مسلمانوں کو ان کی شریعت, ان کی توحید سے ڈی ریل کرنا ہے, اور مسلمان, پڑھا لکھا مسلمان اور یوتھ ڈی ریل ہو رہے ہیں. وہ کہتے ہیں ہمیں اپروپریٹ جواب نہیں ملا, آئی ایم ناٹ سیٹسفائڈ, سو آئی ڈونٹ تھنک کہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے اس بات پر عمل کرنے کی, میں نہیں مانتی دین کو, بس اتنا کافی اللہ ہے, دیٹس انف فور می. یہ ہو رہا ہے, انما انا نذیر مبین, یہ آیت یہ بتا رہی ہے, اور بہت ہی خوبصورت اس کی تفسیر کی ہے اسکالرز نے اس اینگل سے جو آج کے دور میں خوبصورتی سے فٹ آتی ہے. ہم ہر بات کا جواب نہیں دے سکتے, کیوں؟ اس لیے کہ بہت سی چیزیں غیب میں ہیں. قرآن میں اللہ نے بہت سی چیزیں ہاں بلیک اینڈ وائٹ بتائی ہیں, قرآن میں بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے نہیں بتائی. اس بحث میں کیا پڑھنا کہ الف لام میم کے کیا معنی ہیں, بتائیں اللہ نے, ہا میم کے کیا معنی ہیں, بتائیں اللہ نے. اب اس بحث میں کیا پڑھنا, اس بحث میں ہم کیا پڑھیں؟ اللہ نے کچھ چیزوں کے معنی بتائے ہیں, اللہ نے کچھ چیزوں کے میننگز نہیں بتائے, کچھ چیزوں کے میننگز اللہ نے مکمل نہیں بتائے. امتحان ہے ہمارا, کتنا ہم ان کے اندر ہی کھو کر رہ جاتے ہیں اور کتنا ہم ان چیزوں پر فوکس کرتے ہیں جو بلیک اینڈ وائٹ ہیں شریعت کے, جو شریعت کا حلال اور حرام ہے, ہم کتنا اس کے اوپر اپنے آپ کو جماتے ہیں. اللہ نے یہاں انما انا نذیر مبین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلوا کر آج کے فتنوں کو شٹ اپ کرایا ہے. اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ قریش تو صرف الساعہ کا سوال کیا کرتے تھے, یہ قرآن رہتی دنیا تک کے انسان کے لیے ہدایت ہے. اس قرآن کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ آئندہ دنیا میں لوگ صرف قیامت پر سوال نہیں کریں گے, شریعت پر اور سوال بھی کیے جائیں گے. तो मुसलमान थोड़ा सा अकल का इस्तेमाल करें, हर चीज के लिए दलील ढूंढने की जरूरत नहीं है। हाँ, माशरे में कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जिनको शरीयत की ग्रिप हो, जिनके पास दुनिया का इल्म हो, और जो ऐसे लोगों को काउंटर करने के लिए टू सम हाउ टू सम एक्सटेंट कुछ दलील के साथ बात कर सकें। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपकी दलील से सामने वाला सेटिस्फाई हो जाए। जब सेटिस्फाई ना हो तो अपने आप को सिंपली बता दीजिए, इन्नमा अना नदीरु मुबीन, हमारी शरीयत आदि तो बिलीफ इन अनसीन है। जब हमने अल्लाह को नहीं देखा, जब हमने फरिश्तों को नहीं देखा, जब हमने जन्नत को अपनी आंखों से नहीं देखा और हम जिंदगी भर उसके लिए कोशिश करते रहते हैं, तो ये तो मामला ही अनसीन का है। तो जहां समझ आएगी वहां मानेंगे, समय आना व अताना। जहां अल्लाह के रसूल की बात होगी, कुरान की बात होगी, समझ नहीं आएगी तब भी मानेंगे। ये फुआत का मामला है, याद है ना फुआत, इंटेंस इमोशंस, मेरी अटैचमेंट है इस दीन के साथ, इमोशनल अटैचमेंट है इस दीन के साथ। अल्लाह से हमेशा दुआ मांगे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफियन, अल्लाह मुझे नाफे इल्म दे, बेनिफिशियल इल्म दे। मत जाएं उन सवालों के अंदर जिससे मेरे और आपके जिंदगी में बेहतर इंसान बनने से कोई ताल्लुक नहीं है। अल्लाह से मांगे सही थॉट पैटर्न। जब थॉट पैटर्न ठीक नहीं होता ना, तो सवालों के अंदाज बता देते हैं कि आपका जहन डिरेल हो चुका है। इससे क्या फर्क पड़ता है मुझे और आपको कि इमाम मेहदी कब आएंगे, क्या फर्क पड़ेगा? अभी दो दिन पहले किसी ने हरम के तवाफ करते हुए शोर मचाना शुरू कर दिया था, मैं इमाम मेहदी हूं, मैं इमाम मेहदी हूं। इससे क्या फर्क पड़ता है? इस वक्त दज्जाल कहां है बताएं जरा, क्यों बताऊं, मुझे खुद नहीं पता। फिर आगे से जवाब कहता है, मेरा ख्याल है दज्जाल आ चुका है। अच्छा भाई, आपको पता होगा, मुझे नहीं पता। इससे मुझे और आपको क्या फर्क पड़ेगा कि असहाबे कहफ का जो कुत्ता था वो स्पॉटेड था या स्पॉटेड नहीं था, कोई फर्क पड़ेगा? अच्छा ये बताएं, यूसुफ अलैहि सलाम की फाइनली जुलैहा से शादी हो गई थी, इससे मुझे और आपको क्या फर्क पड़ेगा? अपने सवालों को फिल्टर करें और अपने जहन को कुरान के ताबे करें। जितना इल्म नाफे होता जाता है उतने हमारे सवाल ठीक होते जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जेन्युइन सही अहदीस मौजूद हैं, अज़कार मौजूद हैं, दुआएं मौजूद हैं, इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं, उनको छोड़ छोड़कर। अच्छा तो फिर दुरूद ताज पढ़ लें भाई, आपने अल्लाह के रसूल की सारी दुआएं याद कर ली, सब आपको याद हो गई, सारी तस्बीहात आपको आ गई। जो चीज ब्लैक एंड व्हाइट है उसको तो थाम ले। जब जहन डिट्रैक होता है तब ये होता है। तो अपने अंदर अल्लाह की दीन की मोहब्बत लेकर आए, जो वाज़े हुक्म हो उस पर जम जाएं, और प्लीज नई नई बातों से अपने आप को दूर रखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए भी कहलवा दिया गया, इन्नमा अना नज़ीरुम मुबीन। आगे फरमाया आयत नंबर 27, फलम्मा रऔहु ज़ुल्फतन। अब वो लोग जो कि पूछ रहे थे कि क़यामत कब आएगी, अल्लाह कह रहा है